मैं सत्यजीत सिंह सेंगर प्रिय बीए थर्ड ईयर त्रिपुरी का कलचुरी चेदी वंश राजवंश का अध्याय शुरू करने जा रहा हूँ। चंदेल राज्य के दक्षिण में चेदी के कलचुरियों का राज्य स्थित था। उसकी राजधानी त्रिपुरी में थी, जिसकी पहचान मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित तेवर नाम के ग्राम से की जाती है। चेदी पर शासन करने के कारण उन्हें चेदी वंश का भी कहा जाता है। लेखों में वे अपने को हयाही वंश या सहस्रार्जुन कृतवियों का वंश कहते हैं, जिससे लगता है कि वे चंद्रवंशी क्षत्रिय थे। इतिहास के साधन। कलचुरी चेदी वंश के इतिहास को हम उसके लेखों तथा साहित्यिक ग्रंथों से ज्ञात करते हैं। इस वंश के प्रमुख लेख इस प्रकार हैं। पहला, युवराज का बिलाहारी का लेख। दूसरा, लक्ष्मण राज द्वितीय का कारितलाई अभिलेख। तीसरा, कोकल द्वितीय के मुकुंदपुर तथा प्यावां के लेख। चौथा, करण का रीवा 1948-49 ईस्वी का लेख। करण के वाराणसी तथा गोहरवा प्रयाग से प्राप्त ताम्रपत्र अभिलेख। छठवां, यश कर्ण के खैरा तथा जबलपुर के लेख। कुछ लेखों में कलचुरी चेदी संवत की तिथि दी गई है। इनमें कर्ण के अभिलेख सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं, जो उसकी उपलब्धियों का विवरण देने के साथ साथ इस वंश के इतिहास का भी बोध कराते हैं। कलचुरी नरेश युवराज के दरबार में राजशेखर ने कुछ काल तक निवास किया था। वहीं उसने अपने दो ग्रंथों काव्य मीमांसा तथा विद्ध शाल भंजिका की रचना की थी। इनके अध्ययन से हम तत्कालीन संस्कृति का ज्ञान कर सकते हैं। इन ग्रंथों में राजशेखर युवराज की मालवा तथा कलिंग की विजय का उल्लेख करते हुए उसे चक्रवर्ती राजा बताता है। हेमचंद्र के द्वारश्रय काव्य से कर्ण तथा पाल शासक विग्रहपाल के बीच संघर्ष की सूचना मिलती है। बिल्हड़कृत विक्रमाकेंद्र वरचित्रित से कर्ण तथा चालुक्य नरेश सोमेश्वर प्रथम के संबंधों पर प्रकाश पड़ता है। पूर्व मध्यकालीन भारत में कलचुरी वंश की कई शाखाओं के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। कलचुरियों को प्राचीनतम शाखा 6वीं सदी में महिष्मती में शासन करती थी। इसका संस्थापक कृष्णराज था। उसका पौत्र बुद्धराज, कन्नौज नरेश, हर्ष एवं बदामी के चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का समकालीन था। उसके पूर्वजों कृष्णराज एवं शंकरगढ़ का महाराष्ट्र, गुजरात, राजपुताना, कोंकर आदि पर अधिकार था। पुलकेशिन के सैनिक अभियान ने उन्हें उत्तर भारत की ओर विस्थापित कर दिया। इसके बाद कुछ समय तक कलचुरियों का इतिहास अंधकारपूर्ण हो गया। चालुक्यों तथा प्रतिहारों के दबाव के कारण कलचुरी बुंदेलखंड तथा बघेलखंड की ओर बढ़े तथा कालंजर के दुर्ग पर अधिकार कर लिया, किंतु शीघ्र ही प्रतिहारों ने उन्हें वहां से भी हटा दिया। तत्पश्चात कलचुरी गोरखपुर तथा देवरिया जिलों की भूमि पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में फैल गए। यहाँ उनकी सत्ता का संस्थापक राजा राजपुत्र था। कहला तथा कशिया लेखों से पता चलता है कि यहाँ दो कलचुरी वंश शासन कर रहे थे। गोरखपुर क्षेत्र में इस वंश के शासन का प्रारंभ 9वीं सदी के प्रारंभ में हुआ। राजपुत्र की 10वीं पीढ़ी में सूर्यदेव राजा हुआ। राजपुत्र के बाद शिवराज तथा शंकरगढ़ प्रथम राजा बने। इनकी किसी भी उपलब्धि के विषय में पता नहीं चलता। शंकरगढ़ को ही संभवतः त्रिपुरी के कलचुरी नरेश कोकल प्रथम ने अभयदान दिया था। उसका उत्तराधिकारी गुड़ाम्बोध ही हुआ। बताया गया है कि उसने भोजदेव से कुछ भूमि प्राप्त की तथा युद्ध में गौड़ की लक्ष्मी का अपहरण कर लिया। ऐसा लगता है कि उसने प्रतिहार नरेश भोज को भोज की ओर से पालों के विरुद्ध संघर्ष में भाग लिया था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि गुड़ाम्बोधि तथा उसके उत्तराधिकारी गुर्जर प्रतिहारों के अधीन सामंत थे। अगला राजा भामान ने प्रतिहारों के सामंत रूप में धारा के परमार राजा से युद्ध कर ख्याति प्राप्त किया। इस वंश का 10वां राजा सूर्यदेव हुआ, जिसका लेख मिलता है। वह एक स्वतंत्र शासक था, जैसा कि उसकी राजकीय उपाधियों से प्रकट होता है। इस समय तक गंगा जमुना घाटी में तुर्कों के आक्रमण तथा चंदेलों के विस्तार के कारण प्रतिहार साम्राज्य विनष्ट हो गया था, जिससे सूर्यदेव की स्वतंत्र राज्य स्थापित करने में सहायता मिली। उसने घाघरा तथा गंडक के किनारे एक स्वाधीन राज्य कायम कर लिया। परमा माहेश्वर की उपाधि से उसका शैव होना सूचित होता है। सूर्यदेव के उत्तराधिकारियों के विषय में हमें पता नहीं है। संभवतः वह इस वंश का अंतिम स्वतंत्र राजा रहा हो। 11वीं सदी में कन्नौज के गढ़वालों के उत्कर्षों के साथ ही कलचुरी सत्ता का अंत हो गया तथा बनारस तथा कन्नौज से लेकर अयोध्या तक का क्षेत्र गढ़वालों के अधीन आ गया। इस प्रकार सरयू पार में गोरखपुर एवं देवरिया के कलचुरियों की शाखाएं समाप्त हो गई। अब त्रिपुरी अथवा डाहल का कलचुरी वंश शक्तिशाली हो गया। त्रिपुरी या डाहल के कलचुरी वंश का इतिहास। कलचुरी वंशों में यह सबसे प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली सिद्ध हुआ। इसने मध्य भारत पर 3 शताब्दियों तक शासन किया। इस कलचुरी वंश का पहला राजा कोकल प्रथम था, जो संभवतः 845 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। उसका अपना कोई लेख तो नहीं मिलता, किंतु उसकी उपलब्धियों के विषय में हम उसके उत्तराधिकारियों के लेख से जानते हैं। इनमें युवराज देव का बिलहरी तथा कर्ण के बनारस लेख उल्लेखनीय है। ज्ञात होता है कि वह अपने समय का महान सेनानायक था। उसने कन्नौज के प्रतिहार शासक भोज तथा उसके सामंतों को युद्ध में पराजित किया। बिलहारी लेख में कहा गया है कि समस्त पृथ्वी को जीतकर उसने दक्षिण दिशा में कृष्णराज तथा उत्तर दिशा में भोज को अपने दो कीर्ति स्तंभों के रूप में स्थापित किया था। बनारस लेख में कहा गया है कि उसने भोज, वल्लभराज, चित्रकूट, भूपाल, हर्ष तथा शंकरगढ़ नामक राजाओं को अभयदान दिया था। यहाँ भोज से तात्पर्य प्रतिहार भोज तथा कृष्णराज से तात्पर्य राष्ट्रकूट कृष्ण द्वितीय से है। हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं कि इन दोनों राजाओं को उसने किसी युद्ध में जीता था अथवा वे उसका प्रभाव मात्र स्वीकार करते थे। हर्ष, चित्रकूट, भूपाल एवं शंकरगढ़ की पहचान निश्चित नहीं है। संभवतः हर्ष प्रतिहार भोज प्रथम का गुहिल सामंत था, जो चित्तौड़ में शासन करता था। शंकरगढ़ गोरखपुर के कलचूरी शाखा का सामंत शासक था। तुम्बाड़वंशी पृथ्वीदेव के अमोदा लेख में वर्णित है कि कोकल ने कर्नाट वंग, कोंकण, शाकंभरी, तुरुष्क तथा रघुवंशी राजाओं को जीता था, लेकिन यह विवरण अतिशयोक्तिपूर्ण है, जिसकी पुष्टि का कोई आधार नहीं है। इन सभी विजयों के फलस्वरूप वह अपने समय का एक शक्तिशाली शासक बन बैठा। उसने चंदेल वंश की राजकुमारी नट्टा देवी के साथ अपना विवाह तथा राजकुट वंश के कृष्ण द्वितीय के साथ अपनी एक पुत्री का विवाह किया था। इन संबंधों के परिणाम स्वरूप उसने अपने साम्राज्य की पश्चिमी तथा दक्षिण पश्चिमी सीमाओं का संरक्षित कर लिया था। शंकरगढ़ कोकल के 18 पुत्र थे। इनमें उसका ज्येष्ठ पुत्र शंकरगढ़ उसकी मृत्यु के बाद 878 से 888 ईस्वी के बीच चेदी वंश का राजा बना। उसने दक्षिणी कोसल के सोमवंशी शासक को हराकर पाली पर अधिकार कर लिया था। अपने एक छोटे भाई को वहां का राज्यपाल नियुक्त किया। इस समय राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण द्वितीय वेंगी के पूर्वी चालुक्य नरेश विजयादित्य तृतीय के साथ संघर्ष में उलझा हुआ था। शंकरगढ़ एक सेना के साथ कृष्ण द्वितीय की सहायता के लिए गया, परंतु विजयादित्य ने दोनों की सम्मिलित सेनाओं को किरणपुर में परास्त कर दिया। तत्पश्चात चालुक्यों ने किरणपुर, बालाघाट, मध्य प्रदेश को जला दिया। इस पराजय में से शंकरगढ़ को गहरा धक्का लगा। बिल्हारी अभिलेख शंकरगढ़ को मलय देश पर आक्रमण करने का श्रेय प्रदान करता है, परंतु यह उल्लेख संदिग्ध है। उसने अपनी पुत्री लक्ष्मी का विवाह राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण द्वितीय के पुत्री जगतुंग के साथ किया था। युवराज प्रथम शंकरगढ़ के दो पुत्र थे, बालहर्ष और युवराज प्रथम। बालहर्ष का शासन अल्पकालीन था और उसके विजय विषय में हमें कुछ भी पता नहीं है। 10वीं शताब्दी के मध्य युवराज प्रथम शासक हुआ। वह एक विजेता था जिसने बंगाल के पाल तथा कालिंग के गंग शासकों को पराजित किया, परंतु चंदेल नरेश यशोवर्मन से वह पराजित हो गया। इसके अतिरिक्त राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने उसके राज्य पर आक्रमण किया। इसमें कलचुरियों की करारी हार हुई तथा इनके राज्य पर कुछ काल के लिए राष्ट्रकूटों का अधिकार हो गया, परंतु शीघ्र ही युवराज प्रथम ने इस पराजय का बदला लिया तथा एक सेना के साथ उसने राष्ट्रकूटों को परास्त कर अपने राज्य से बाहर भगा दिया। बिलहारी अभिलेख से पता चलता है कि उसने कर्राट तथा लाट को जीता था। ढंग के खजुराहो में लेख में भी उसने उसकी शक्ति की प्रशंसा करते हुए उसे प्रसिद्ध राजाओं के मस्तक पर पैर रखने वाला कहा गया है। राजशेखर के ग्रंथ विदसाल भंजिका में युवराज को उज्जयिनी भुजंग कहा गया है, जो इस बात का सूचक है कि उसने मालवा को जीता था। युवराज के शासनकाल में ही राजशेखर कन्नौज छोड़कर त्रिपुरी आया। वहीं रहते उसने अपने दोनों ग्रंथ काव्य मीमांसा तथा विदसाल भंजिका की रचना की थी। युवराज शैव मतानुयायी था। उसने शैव संतों को दान दिया तथा उनके निवास के लिए गुर्गी में एक मंदिर तथा मठ बनवाया था। एक लेख में कहा गया है कि उसने डाहल मंडल के शैव संत सदा भाव शंभु को 300,000 गांव भिक्षा में दिया था। उसकी पत्नी नोहला चालुक्य वंश से कन्या थी, जिसने बिल्हारी के निकट शिव का एक विशाल मंदिर बनवाया था तथा उसके लिए कई गाँव दान में दिए। भरद्वाज वंशी ब्राह्मण भाकम मिश्र युवराज का प्रधानमंत्री था। भेड़ाघाट जबलपुर का प्रसिद्ध 64 योगिनी मंदिर का निर्माण भी युवराज के समय में ही हुआ था। लक्ष्मण राज युवराज प्रथम के बाद उसका पुत्र लक्ष्मण राज शासक बना। वह भी एक शक्तिशाली राजा था जिसने कलचुरी साम्राज्य का चतुर्विधिक विस्तार किया। बिलहारी तथा गोहरावा के लेख से उसके विजय के विषय में सूचना प्राप्त होती है। बिलहारी लेख के अनुसार युवराज ने कोसल राज को जीतते हुए आगे बढ़कर उड़ीसा के राजा से रत्न और स्वर्ण से जटिल कलियन की प्रतिभा प्राप्त की। इससे उसने सोमनाथ की पूजा की। इसी प्रकार बिलहारी लेख में कहा गया है कि उसने बंगाल के राजा को पराजित किया, पांड्य राज को पराभूत किया, लाट के राजा को लूटा, गुर्जर नरेश को जीता तथा कश्मीर के राजा ने मस्तक झुकाकर उसके चरणों की पूजा किया। इन लेखों का विवरण यद्यपि प्रशस्ति प्रकार का है जिसमें अतिरंजना का पुट मिलता है तथा इसमें भी कुछ ऐतिहासिक तथ्य निहित है, उसका सोमनाथ तक अभियान तथ्य पर आधारित प्रतीत होता है। 10वीं शती के द्वितीयार्ध में गुर्जर तथा लाट भारी अव्यवस्था के शिकार थे। लाट प्रदेश पर राष्ट्रकूटों के सामंत शिलाहार वंश तथा उत्तरी गुजरात पर कन्नौज के प्रतिहारों का अधिकार था। इन दोनों शक्तियों के पतन के दिनों में इन प्रदेशों में अव्यवस्था फैल गई, जिसका लाभ उठाते हुए लक्ष्मण राज ने इन प्रदेशों से होते हुए सोमनाथ तक सफल अभियान किया होगा। कोसल से तात्पर्य दक्षिण कोसल से है। यहाँ संभवतः उड़ीसा के सोमवंशी राजा राज्य करते थे। जहाँ तक बंगाल का प्रश्न है, हमें ज्ञात है कि 10वीं शती के द्वितीयार्ध से वहाँ शासन करने वाले पाल वंश की स्थिति निर्बल पड़ गई थी। ये 11वीं शती के प्रथमार्ध में कलचुरी बंगाल के शासकों के घनिष्ठ संपर्क में थे। संभव है इसी का लाभ उठाते हुए लक्ष्मण राज ने वहाँ सैनिक अभियान कर सफलता प्राप्त की हो। यहाँ तक हम कुछ ठोस आधार पर हैं, लेकिन जहाँ तक कश्मीर तथा पांड्य राज्य के विजय का प्रश्न है, यह शुद्ध रूप से काव्यात्मक प्रतीत होता है। लक्ष्मण राज ने अपनी पुत्री का विवाह चालुक्य नरेश विक्रमादित्य चतुर्थ के साथ किया था। अपने पिता के समान लक्ष्मण राज भी शैव मत का पोषक था तथा शैव संतों को संरक्षण प्रदान किया था तथा हृदय शिव के लिए बहुमूल्य उपहारों सहित बैद्यनाथ मठ का दान किया। उसका प्रधान सचिव सोमेश्वर था जिसने विष्णु का एक मंदिर बनवाया था। लक्ष्मण राज के बाद उसका पुत्र शंकरगढ़ तृतीय राजा बना। उसकी कोई उपलब्धि नहीं है। उसके बाद उसका छोटा भाई युवराज द्वितीय राजा बना। गोहरवा लेख में उसे चेद्रिंद्र चंद्र अर्थात चेदीवंश के राजाओं में चंद्र कहा गया है। उसने परमेश्वर की उपाधि धारण की, किंतु सैनिक दृष्टि से वो निर्बल शासक था जिसे व्यंगी के चालुक्य नरेश तैल द्वितीय तथा परमार नरेश मुंज ने पराजित कर दिया। त्रिपुरी पर मुंज ने कुछ समय तक अधिकार बनाए रखा। उसके हटने के बाद मंत्रियों ने युवराज द्वितीय को हटाकर उसके पुत्र कोकल द्वितीय को राजा बना दिया। उसके समय में कलचुरियों ने अपनी शक्ति एवं मर्यादा को पुनः प्राप्त कर लिया। कोकल द्वितीय ने गुर्जर देश गुजरात पर आक्रमण कर चालुक्य नरेश चामुंड राज को पराजित किया। उसने कुंतल तथा गौड़ शासकों के विरुद्ध भी सफलता प्राप्त की। उसने 1019 ईस्वी तक राज्य किया। कलचुरी सत्ता का उत्कर्ष। गंगादेव विक्रमादित्य शासनकाल 1019 से 1041 ईस्वी तक। कोकल द्वितीय के पश्चात उसका पुत्र तथा उत्तराधिकारी गंगादेव विक्रमादित्य कलचुरी वंश का एक प्रतापी राजा हुआ। उसके राज्यारोहण के समय कलचुरी राज्य की स्थिति अत्यंत निर्बल थी। परमार भोज तथा चंदेल विद्याधर उसके प्रबल प्रतिद्वंदी थे, अतः उनके विरुद्ध अपने वंश की सत्ता सुदृढ़ बनाना गंगादेव का प्रथम कर्तव्य था। ऐसा लगता है कि अपने शासन के प्रारंभ में वह चंदेल नरेश विद्याधर की अधीनता स्वीकार करता था। खजुराहो से प्राप्त एक चंदेल लेख से इसकी सूचना मिलती है, जिसके अनुसार कलचुरी नरेश विद्याधर की गुरु के समान पूजा करता था। यहाँ कलचुरी नरेश से तात्पर्य गंगादेव से ही है। मिराशी का विचार है कि गंगादेव ने राज्यपाल के विरुद्ध अभियान में विद्याधर की ओर से भाग लिया था। चूंकि परमार भोज भी विद्याधर से आतंकित था, अतः वह गंगादेव का स्वाभाविक मित्र बन गया। भोज ने कल्याणी के चालुक्य नरेश जयसिंह द्वितीय के विरुद्ध जो सैनिक अभियान किया था, गंगादेव भी उसमें शामिल हुआ था, किंतु जयसिंह ने उसे पराजित कर दिया। इसके साथ ही भोज के साथ उसकी मित्रता भी समाप्त हो गई। मध्य भारत पर प्रभुत्व के लिए दोनों के बीच एक युद्ध भी हुआ जिसमें गंगादेव पराजित हो गया, किंतु इससे गंगादेव हताश नहीं हुआ। विद्याधर की मृत्यु के बाद उसने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दिया तथा इस अवधि में उत्तरी भारत का सार्वभौम शासक बनने के लिए उसने अनेक विजय की। उसने अंग उत्कल काशी तथा प्रयाग को जीता तथा प्रयाग में उसने अपना एक निवास स्थान बनाया। काशी का क्षेत्र संभवतः उसने पाल शासकों से छीना था। प्रयाग पर उसके अधिकार की पुष्टि खैरा और जबलपुर के अभिलेखों से होती है, जहां बताया गया है कि गंगादेव ने बट वृक्ष के नीचे निवास करते हुए अपनी 100 रानियों के साथ प्राण उत्सर्ग कर मुक्ति प्राप्त किया था। इससे तथा उत्तर भारत में प्राप्त उसके बहुसंख्यक सिक्कों से वहां उसका अधिकार प्रमाणित होता है। संपूर्ण कलचूरी वंश में सिक्के प्रवर्तित करने वाला गंगादेव पहला और शायद अंतिम राजा था। ये सिक्के लक्ष्मी शैली के हैं। राजपूत राजाओं में सर्वप्रथम उसी ने स्वर्ग सिक्के प्रचलित करवाए थे। बनारस पर गंगादेव के अधिकार का परोक्ष रूप से समर्थन बैहागी के विवरण से भी होता है, जिसमें बताया गया है कि 1033 ईस्वी में अहमद नियालतगिन ने जब बनारस पर आक्रमण किया तो वहाँ का शासक गंग अर्थात गंगादेव था। गंगादेव ने उत्तर पश्चिमी में पंजाब तथा दक्षिण में कुंतल तक सैनिक अभियान किया। एक नेपाली पांडुलिपि में उसे तीर भुक्ति अर्थात तीरहुत का स्वामी बताया गया है। पूर्व की ओर उसने उड़ीसा तक अभियान कर विजय प्राप्त की थी। गोईखा लेख से सूचना मिलती है कि उसने उत्कल के राजा को जीतकर अपनी भुजाओं को एक विजय स्तंभ बना दिया था। इस प्रकार गंगादेव एक विस्तृत साम्राज्य का शासक बना तथा महाराजाधिराज परमेश्वर महामंडलेश्वर जैसी उच्च सम्मान परक उपाधियों को ग्रहण किया। खैरा लेख से पता चलता है कि उसने विक्रमादित्य की भी उपाधि ग्रहण की थी। अपने पूर्वजों की भांति गंगादेव भी शैव मत अनुयायी था तथा उसने भी शैव मंदिरों एवं मठों का निर्माण करवाया था। कर्ण अथवा लक्ष्मीकर्ण, शासनकाल 1041 से 1070 ईस्वी तक। गंगादेव के बाद उसका पुत्र कर्णदेव अथवा लक्ष्मीकर्ण शासक बना। वह अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था। उसने कुल 8 अभिलेख मिलते हैं जिनसे हम उसकी उपलब्धियों का ज्ञान करते हैं। उसने अनेक सैनिक अभियान किए। गुजरात के चालुक्य नरेश भीम के साथ मिलकर उसने मालवा के परमार वंशी शासक भोज को पराजित किया। रासमाला से पता चलता है कि कर्ण ने धारा को ध्वस्त करने के बाद राजकोष पर अधिकार कर लिया। इस युद्ध में भोज मारा गया। प्रबंध चिंतामणि में इसका समर्थन होता है। भेड़ाघाट अभिलेख में कहा गया है कि कर्ण की वीरता के सामने वंग तथा कलिंग के शासक कांपने लगे। बंगाल में इस समय जातवर्मन नामक कोई राजा शासन कर रहा था। कर्ण ने अपनी कन्या वीरश्री का विवाह उसके साथ कर दिया था। कर्ण ने कलिंग की विजय तथा त्रिकालिंग दापति की उपाधि धारण की। पूर्व की ओर गौड़ तथा मगध के पाल शासकों को उसने पराजित किया। तिब्बती परंपरा से पता चलता है कि मगध में उसने बहुसंख्यक बौद्ध मंदिरों तथा मठों को नष्ट कर दिया था। पाल नरेश विग्रहपाल तृतीय को उसने युद्ध में पराजित किया। कर्ण के पैकोर वीरभूमि जिला, लेख से पता चलता है कि उसने वहां की देवी को स्तंभ समर्पित किया था। हेमचंद्र भी कर्ण द्वारा विग्रहपाल के पराजय का उल्लेख करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि कर्ण ने उसके साथ संधि कर ली तथा अपनी कन्या का विवाह कर उसे अपना मित्र बना लिया। कर्ण का सबसे प्रसिद्ध संघर्ष बुंदेलखंड के चंदेल वंश के साथ हुआ। विद्याधर की मृत्यु के बाद वहां का शासन निर्बल राजाओं के हाथ में आ गया जो अपनी रक्षा करने में सक्षम नहीं थे। इसका लाभ उठाते हुए कर्ण ने चंदेल नरेश देववर्मन पर आक्रमण कर उसे परास्त कर उसके राज्य के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया। चंदेल लेखों से भी पता चलता है कि कुछ समय के लिए उनका राज्य कर्ण के आक्रमण से पूर्णतया भी नष्ट कर दिया गया था। बिल्हड़ कर्ण को कालंजर गिरी के अधिपातियों का काल कहता है। इस प्रकार विविध स्रोतों से स्पष्ट होता है कि कर्ण तत्कालीन मध्य भारत का सर्वशक्तिमान सम्राट बन गया। परमार तथा चंदेल राजाओं को उन्मूलन करके उसने अपनी स्थिति सार्वभौम बना ली। उसके लेखों की प्राप्ति स्थानों पैकोर बनारस गोहरावा आदि से भी पता चलता है कि वह एक विस्तृत भूभाग का स्वामी था। कभी कभी कुछ यूरोपीय इतिहासकार कर्ण की उपलब्धियों की तुलना फ्रांसीसी सेनानायक नेपोलियन से करते हैं, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि कर्ण अपनी अजेयता अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रख सका तथा अपने शासन के अंतिम दिनों में उसे पराभव उठानी पड़ी। चंदेल नरेश कीर्ति बर्मन द्वारा वह पराजित कर दिया गया। इससे कर्ण की शक्ति अत्यंत निर्बल पड़ गई। पूर्व में विग्रहपाल तृतीय के पुत्र नयपाल, पश्चिम में परमार नरेश उदयादित्य, उससे पश्चिम में अनिलवाड़ के चालुक्य भीम प्रथम तथा दक्षिण में कल्याणी के चालुक्य नरेश सोमेश्वर प्रथम ने भी कर्ण को कई युद्धों में पराजित कर उसकी प्रतिष्ठा को धूल में मिला दिया। 1073 ईस्वी के लगभग उसका शासन समाप्त हो गया। कर्ण भी अपने पिता के समान शैव मत का अनुयायी था तथा बनारस में उसने कर्ण मेरु नामक शैव मंदिर बनवाया था। उसने त्रिपुरी के निकट कर्णावती आधुनिक कर्णबेल नामक नगर की स्थापना भी कराई थी। उसका विवाह हूण वंशीया कन्या अवला देवी के साथ हुआ था। सारनाथ के बौद्ध भिक्षुओं को भी उसने सुविधाएं प्रदान की थी। प्रयाग तथा काशी में वह दान वितरित करता था। कलचुरी सत्ता का विनाश। कर्ण की मृत्यु के बाद कलचुरियों की शक्ति क्रमशः छिन्न होने लगी। उसके बाद उसकी पत्नी आवला देवी से उत्पन्न पुत्र यशः कर्ण राजा बना। उसके जबलपुर तथा खैरा लेखों से पता चलता है कि स्वयं लक्ष्मीकर्ण ने ही उसका राज्याभिषेक किया था। वह अपने पिता के समान शक्तिशाली नहीं था। उसकी एकमात्र सफलता जिसका उल्लेख उसके लेखों में किया गया है यह थी कि वह आंध्र के राजा को जीतकर गोदावरी नदी तट तक पहुँच गया तथा वहां भीमेश्वर मंदिर में पूजा की। यह पराजित राजा वेंगी का पूर्वी चालुक्य वंशी विजयादित्य सप्तम था, किंतु वह अधिक समय तक अपना राज्य सुरक्षित नहीं रख सका। उसे गंभीर चुनौती काशी कन्नौज क्षेत्र के गढ़वालों द्वारा मिली, जिनका उत्कर्ष चंद्रदेव के नेतृत्व में तेजी से हुआ। उसने काशी कन्नौज तथा दिल्ली के समीपवर्ती सभी क्षेत्रों को जीतकर अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर दिया। इन स्थानों को उसने यशः कर्ण से ही जीता होगा। इसके अतिरिक्त परमार लक्ष्मणदेव कल्याणी के चालुक्य नरेश, विक्रमादित्य षष्ठ, चंदेल नरेश संलक्षण वर्मा आदि ने भी कई युद्धों में यशः कर्ण को पराजित कर दिया। यशः कर्ण के बाद उसका पुत्र गयाकर्ण 1123 से 1151 ईस्वी तक राजा बना। वह भी एक निर्बल राजा था जो अपने वंश की प्रतिष्ठा एवं साम्राज्य को सुरक्षित नहीं रख सका। चंदेल नरेश मदन वर्मा ने उसे बुरी तरह पराजित किया। गयाकर्ण इत्यान इतना भयंकृत था कि उसका नाम सुनकर ही भाग खड़ा होता था। दक्षिणी कोसल के कलचुरी सामंतों ने भी अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी तथा उनके शासक रत्नदेव द्वितीय ने भी गयाकर्ण को पराजित किया। गयाकर्ण के बाद नरसिंह, जय सिंह तथा विजय सिंह के नाम मिलते हैं, जिन्होंने बारी बारी से शासन किया। वे भी अपने साम्राज्य को विघटन से नहीं बचा सके। 12वीं शती के अंत तक इस वंश ने महाकोसल में किसी न किसी प्रकार अपनी सत्ता कायम रखी। अंतोत्तगत्वा 13वीं शती के प्रारंभ में इस वंश के अंतिम शासक विजय सिंह को चंदेल शासक त्रैलोक्य वर्मन ने परास्त कर त्रिपुरी को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। इस प्रकार कलचुरी चेदी वंश का अंत हुआ।